अब आगे देखिए इज्तमाही दावत, या फिर रुक के अपने ऊपर बात कर लीजिएगा। मुझे और आपको क्या करना है? क्या दुश्मनों को से कटना है? क्या काफिरों को मारना है और इस्लाम से उनको दूर करना है? नहीं, इन आयात में कॉमन दावत है। अल्लाह के नबी सल्लम जब सुलह हुदैबिया के नतीजे में अब कुफार के साथ जंग से जरा मुतमईन हो गए, क्योंकि 10 साल जंग ना होने का मामला तय पा गया था, तो उसके बाद आपने कहा कि अब मैं गैर मुस्लिम हुक्मरानों को खत लिखूंगा। तो जब आप उनको खत लिखते, किस तरह लिखते थे? ये आयत, आयत 64 हाईलाइट कर लीजिए, बेस्ट आयत है दावा के लिए। वेन एवर वी शुड टॉक टू क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, वी कैन यूज दिस वर्स। कॉमन ग्राउंड पे बात करेंगे कैसे? कुल या अहले किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन, कलिमतिन सवाइन। कहो अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में यकसा है। कॉमन थिंग्स, क्या ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इताअत करने वाले हैं। देखिए, फिरकों में बंटना और लोगों को बुरा भला कहना, ये कभी लोगों को इस्लाम के करीब नहीं लाएगा। आप इधर इमेजिन कीजिए जिप को, जिप कभी खुली हो तो कहाँ से जोड़नी शुरू करते हैं? नीचे से जोड़ते हैं ना, कॉमन चीजों को जोड़ के उसके ऊपर आप हाथ से उसका टैग लेंगे तो पूरी जिप बंद हो जाएगी। आज आपको दुनिया में बिखरापन दिख रहा है, लोग टूटे फूटे हैं। आपको क्रिश्चियंस को भी दावत देनी है, ज्यूज को भी देनी है, और बाकियों को भी दे के मुसलमानों को देनी है। क्या करें? पहले फाइंड आउट कीजिए कॉमन थिंग्स, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूइज्म। और एक चीज सब में असलन से ही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो अलग बात है कि आज वो क्रिश्चियन भी नहीं रहे। याद रखिए, आज खुद को क्रिश्चियन कहने वाले असल में क्रिश्चियन नहीं रहे, वो एथियस्ट हो चुके हैं बहुत सारे। क्योंकि क्रिश्चियन तो खुद को कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देर इज नो गॉड बट अल्लाह। ज्यूस अपने वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। आज अगर वो जैर को अल्लाह का बेटा बना ले, अगर क्रिश्चियन जो है वो हजरत ईसा को बना ले, तो फिर समझ लीजिए कि वो पीछे हैं। हमें क्या करना है? दावत देते वक्त बैकवर्ड चलने की बजाय सीधे तरह से चलिए। चलिए ठीक है, इट्स ओके। वो काम जो नहीं करते आपके, हम भी नहीं करते। यस, आपके भी दीन में, ये हमारे भी। और कुछ बेसिक्स, यूनिवर्सल ट्रूथ हर रिलीजन में सेम है। झूठ ना बोलना, कोई कौम नहीं कहती झूठ बोलो। शराब को हर एक बुरा कहता है, चाहे कोई पिए। गैमलिंग को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन करे। इस तरह से आप ला इलाहा से बात शुरू करें। जब भी दावत दें, इलाह से बात करें। अल्लाह कौन है? देखो आसमान को, चांद को, सूरज को, सितारों को। इस तरह से बात करेंगे तो कम से कम थोड़ी देर के बाद फिर आपके उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। वी नीड टू मेक बैरियर्स, नहीं बल्कि वी नीड टू मेक ब्रिजेस। हम बैरियर बना के जब अपने आप को दूर करते हैं, और तबलीग का आगाज हम कहां से करते हैं? जो चीजें उनके अंदर, हमारे अंदर खिलाफ है। मसलन, पिक का गोश्त हम नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, हम गैर जबीहा नहीं खाते। इन पेटी इश्यूज को शुरू करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? यहां से तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो आपसे इतने उल्टे सिलते सवाल करेंगे, कभी औरतों की बात, कभी चार शादियों की बात, कभी कुछ। डोंट डिस्ट्रैक्ट, बिल्कुल एक इधर से उधर ना, पूरा वक्त इस बात पे करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मानते हो ना इलाह है? अल्लाह को तो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हो, बाकी क्या करो? और ये कि हम इसके सिवा किसी की बंदगी ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बनाए। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़ लें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इताअत करने वाले हैं। यानी वो तुम्हारी नहीं मानते तो अब तुम ना उनकी मानने लग जाओ। जैसे कहते हैं ना, इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, ये ना करो। फिर पीयर प्रेशर में ना हो। आज हम मुसलमानों का ये मसला है, हम उनके प्रेशर में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस अब वो नहीं तुम्हारे जैसे होते, चलो तुम उन जैसे हो जाओ। और सारे दीनों को मिलाकर एक कॉमन ब्लंडर बनाकर कहते हैं ये दीन अच्छा है। कुछ क्रिश्चियंस की बातें ले लो, कुछ ज्यूज की ले लो, कुछ फलां की कुछ ले लो। तो ऐसा अगर मरगुल्ला बनाना होता तो फिर अल्लाह के नबी को इतनी मारे खाने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे लोग ये भी धोखा देते हैं कि अल्लाह के नबी ने अरब कल्चर की तरफ बुलाया। अगर अल्लाह के नबी ने अरब कल्चर की तरफ बुलाया होता तो बताइए इतनी जंगें क्यों होती कुफार से? वो सारी तो कल्चर की जंग थी। उन्होंने कल्चरली अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ था। बेटियों को जिबा कर देते थे पैदा होते ही। हज की जगह पे रौनक मेला था, नमाज की जगह तालियां थी। जीने मरने खाने पीने में फर्क थे। सारी जंग तो अल्लाह के नबी की कुफार के साथ इस चीज की थी कि उनका कल्चर इस्लाम से नहीं मिलता। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने इब्राहिमिक कल्चर पे बुलाया, दीन इस्लाम पे बुलाया। वरना फिर लोग क्या कहते हैं, चूंकि अल्लाह के नबी अरब में आए थे तो अरब वाले बन गए, उन्होंने अरब कल्चर अख्तियार किया। तुम वेस्ट में आते हो तो वेस्टर्न हो जाओ, तुम यूरोप में जाते हो यू शुड बी यूरोपियन, आप ही उधर जाओगे उधर हो जाओ। तो ये गलत फहमी है जो आज उम्मत मुस्लिमा को दी जा रही है कि बस अपने मुल्क में रहो, जैसे वो है तुम वैसे बन जाओ, हालांकि हम पीछे पड़ चुके हैं। सिबगत अल्लाह ही वमन अहसन सिबगा। देखिए, दूसरों से कल्चर या तरीका जिंदगी वो ले जिसका अपना ना हो। इस्लाम तो एक कंप्लीट वे ऑफ लिविंग है। अभी इन तीन चार पारों में ही आपको अंदाजा हो गया कि इस्लाम इतनी पर्सनल चीजों को भी डिस्कस करता है। तो लिहाजा अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आपने उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, अब अकायद में बिल्कुल फर्क हो चुके थे। यहूद और नसारा हजरत इब्राहिम से लेकिन निस्बत उनसे जोड़ते थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी। ही वॉज वर्ल्ड लीडर। तो अल्लाह ताला अब उसकी तरफ बात लाते हैं, अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाजिल हुई हैं, फिर क्या तुम इतनी भी बात नहीं समझते? दोनों का दावा क्या था कि वो यहूदी या नसरानी थे, और दोनों हजरत इब्राहिम के बाद दुनिया में। ये तो बिल्कुल वैसी मिसाल है जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे मैं आपकी शादी में आया था, तो हंसेंगे ना लोग। तो इब्राहिम तो उस वक्त थे ही नहीं दुनिया में जब क्रिश्चियनिटी या ज्यूइज्म का आगाज हुआ। तो हाउ ही विल बी ज्यू और क्रिश्चियन? ये मुराद है कि तुम उनके साथ निस्बत जोड़ रहे हो तो गलत जोड़ रहे हो। तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो इनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब इन मामलात में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह ताला जानता है, वान तुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते थे। तो कुरान खोल के सुन लो, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो यकसू मुस्लिम थे। इसको हाईलाइट करें, फोकस्ड थे, मुस्लिम थे। यहाँ मुस्लिम से मुराद इस्लाम भी है, और फोकस्ड होना और अल्लाह के सबमिशन में आना भी है, और वो हरगिज मुशरिकों में से ना थे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए कि मुसलमान अगर इब्राहिम वाली पर्सनैलिटी आज भी अपना लेंगे ना, तो सब लोग मुसलमानों से निस्बत जोड़ना चाहेंगे। कोई भी किसी के से निस्बत कब जोड़ता है? जब अगली चीज अच्छी हो। कोई इदारा अच्छा है तो आप कहते हैं हम उस इदारे से पढ़े थे, कोई टीचर अच्छा है तो आप उस टीचर से निस्बत जोड़ते हैं। अगर आज के मुसलमान इब्राहिम को रोल मॉडल बना लें, और वो क्या उनकी कुर्बानियां थी, पीछे कुछ पढ़ी कुछ आगे पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोगों के भी प्यारे हो जाएंगे। लोग हमसे कटने की बजाय लोग निस्बत हमसे जोड़ेंगे। फरमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की। अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हों। कितना क्लियर है। असल बात क्या हुई? अकायद। चूंकि नबी सल्लम के अकायद हजरत इब्राहिम से मिलते थे तो फिर निस्बत उनकी हुई। तो नामों से कुछ नहीं होता, असल चीज काम है। फिर दोबारा मुसलमानों को वॉर्न किया। अब इन आयतों को मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि कुरान की आयतों के टेक्स्ट में ही समझ लें तो बेहतर है। मैं बहुत कम बोलती हूँ इन आयतों पर। जहां भी कोई ऐसा इशू आ जाता है कि जो हम मुसलमानों को बहुत ही फंडिंग लगता है, तो जब मैं कुछ बोलूंगी तो आप सोचेंगे शायद ये मेरे नजरियात है, लेकिन कुरान और उसका तर्जमा देख लें, किसी जाके डिक्शनरी से तर्जमा देखें, तर्जमे में इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। क्या फरमाया? वद्दत्ताइफतु मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम। गौर करेंगे हम इन आयतों पर, लेकिन आगे एक्स्ट्रा बोलेंगे नहीं। ए ईमान लाने वालों, कौन है आप और मैं? अहले किताब में से एक गिरोह ये चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास से हटा दे, यानी उनका प्लान क्या है कि तुम राह रास से हटो। यहाँ एक गिरोह पे भी हाईलाइट कर लीजिए, सारे नहीं है। और अमूमन ये एक गिरोह मजहबी गिरोह होता है, घरों में इर्द गिर्द नेबर्स में रहने वाले सीधे साधे लोग नहीं ये चाहते होंगे। उनको तो इसकी क्या परवाह है कि आप कौन है, उनको अपनी नहीं परवाह, अपने बच्चों के दीन की परवाह नहीं, आपकी क्या होगी। लेकिन इनके उलमा और इनके वो पढ़े लिखे लोग जो आपको भी जानते हैं और अपने दीन को भी, उनकी ये ख्वाहिश है कि आपको सीधे रास्ते से हटा दे। हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर इन्हें इसका शऊर ही नहीं। चलिए मैं आपसे चंद बातें पूछती हूँ। आप यहाँ आए फर्स्ट टाइम, आपने यहाँ आने वाली एक सिस्टर से कहा कि जरा मुझे बताइए कि इल्म अकेडमी किधर है। पर्पसली वो आपको गलत डायरेक्शन देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप देर से आए और वो आगे जाके अच्छी सी सीट ले लें, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई जानते बूझते हमें गलत बताए तो हमें कैसा लगता है? गुस्सा आएगा? आपने किसी के घर कोई चीज खाई, बहुत ही टेस्टी थी, आप कहते अच्छा मेरे घर दावत है मैं भी बनाऊंगी, अच्छा सिस्टर कैसे बनाई थी? अब वो सिर्फ इस सोच रहे कि अगर इसने भी वैसी बना ली तो मुझे कौन तमगा देगा और मुझे अवार्ड कौन देगा, उसने कुछ चीजें इधर उधर कर दी, जब आपने बनाई तो वो आप नहीं खाई, आपको वो कैसा लगेगा? दुख होगा ना। अब इस आयत को दोबारा सुनिए। ऐ ईमान लाने वालों, अहले किताब में से गिरोह चाहता है कि तुम्हें सीधे रास्ते से भटका दे। क्या इस जुमले को सुनकर कुछ नहीं हुआ? इट्स ओके, सो इनोसेंट। नहीं, दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर इनको इसका शऊर नहीं। अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद इनका मुशाहिदा कर रहे हो? अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर शुबे वाला बनाते हो? क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो? अब ये क्वेश्चनिंग है उनके उलमा से। अहले किताब में से एक गिरोह कहता है, इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है इस पर सुबह को ईमान लाओ। नोट कीजिएगा, सुबह क्या हो? एक्सेप्ट इस्लाम, और शाम को इससे इनकार निकल दो, लीव द इस्लाम। क्यों? शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाए। क्या सोचेंगे, ओ हमें तो इस्लाम में कोई खैर ही नहीं मिली। एंड दैट हैपेंड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। कुछ लोगों ने लोगों को इस्लाम से मुतनफर करने के लिए यही किया, नाम का कलमा पढ़ लिया, कुछ दिन मुसलमानों की नजरों में रहे, लोगों ने देखा बड़े खुश हुए, कुछ दिन के बाद कहा ना 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 हम वापस जा रहे हैं, हमें तो इस इस्लाम में कोई खैर नहीं मिली। ये कल भी था, ये आज भी है। ऐसी चीजें आम की जाती हैं जिनको पढ़कर मुसलमान सोचे कि अच्छा फिर ये छोड़ गए तो फिर हम भी छोड़ सकते हैं। नीज से लोग आपस में कहते हैं, अपने मजहब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो। आज यही बात मुसलमान दूसरे मसलक के लिए कहता है, अपने मसलक के सिवा किसी की बात ना सुनो। ए नबी से कह दो, असल में तो हिदायत अल्लाह की हिदायत है और ये इसी की देन है कि किसी को वही कुछ दिया जाए जो तुमको दिया गया, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी हुज्जत मिल जाए। ए नबी इनसे कहो, क्या कह दो कि फजल और शर्फ तो अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए, वो वसीउन नजर है, यानी वसत नजरी चाहिए, और सब कुछ जानता है, अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है, और इसका फजल बहुत बड़ा है। यहाँ रहमत से क्या मुराद है? नबुव्वत, दीन, इस्लाम। अच्छा, अभी तक जितनी बातें आई ना, हमें ऐसे लगा कि इनमें सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हैं, लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए, बंदे वो रब के ही हैं, उनमें कोई खूबी है ना, अब उसका भी जिक्र है। अहले किताब में कोई तो ऐसा है, अगर तुम इसके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल यह कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी इस पर भरोसा करोगे तो वो अदा ना करेगा, इल्ला ये कि तुम इसके सर पर सवार हो जाओ। इनकी इस अखलाकी हालत का सबब यह है कि वो कहते हैं उम्मियों, यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई पकड़ नहीं, यानी ये उनके अंदर के राज हैं जो कुरान ने खोल दिए। वो कहते हैं पूरी दुनिया हमारी है, इस वक्त किसी दूसरे के पास कोई चीज है तो उसने हमारी चीज पे कब्जा किया हुआ है, लिहाजा हम जाएं किसी की कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें, किसी के कोई नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लें, किसी की माइंस को पकड़ लें, वी हैव द राइट। ये है सासे तकबर जो पूरी दुनिया में फिर उनको इंटरफेरेंस की आदत डाल देता है। वो कहते हैं ये हमारे मुल्क है, ऐसे इन लोगों ने लिए हुए, हम इनसे ले लें। ये कल भी बात थी, ये आज भी है। फरमा ये बात वो महज झूठ खड़कर अल्लाह की तरफ मनसूब करते हैं, हालांकि इन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। आखिर क्यों इनसे बास पुरस ना होगी? जो भी अपने अहद को पूरा करेगा वो बुराई से बचकर रहेगा, वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजकार लोग अल्लाह को पसंद है। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क्यामत के रोज ना इनसे बात करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, ना इनको पाक करेगा। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं वो कहेगा नहीं करता तो ना करे। आज इतनी बेहिसी अल्लाह के मामले में भी कि जरा सी बात आप करके देखें, नो एक्सप्रेशन, नो फीलिंग्स एट ऑल। साहबा रो पड़ते थे इस बात पे कि अच्छा अल्लाह बात नहीं करेगा। बस साहब अल्लाह के नबी से आके पूछते थे, अल्लाह के नबी, अल्लाह मेरी किस बात पे हंसता है, अल्लाह मेरी किस बात पे मुस्कुराता है? जब अल्लाह ताला से एसोसिएशन होता है, जब क्लोजनेस होती है, तो छोटी-छोटी बातों पे इंसान टची हो जाता है। हम खुद से पूछते हैं, मैं कितनी अल्लाह के बारे में टची हूं? अगर मुझे पता चले कि अल्लाह मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी तरफ देखेगा नहीं, मुझे पाक नहीं करना चाहता, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि इनके लिए तो सख्त दर्दनाक अज़ाब है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब पढ़ते वक्त इस तरह जुबान का उलट फेर देते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है। इनकी इल्मी खयानते, अल्लाह की आयतों में अपनी बातें शामिल करते हैं, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। यानी जब मजहबी तबका अल्लाह की किताब को एक्सरसाइज बुक की तरह ट्रीट करे, जो चाहा लिखा लिख दिया, जो चाहा मिटाया मिटा दिया, तो नुकसान क्या होगा? इसका वही नुकसान होगा जो आज भी आप देख सकते हैं इर्द गिर्द में कि किन हालात में ये सारे मामले होते हैं। तो याद रखिए, दीन के मामले में कोई बात करते वक्त बहुत केयरफुल रहें, अल्लाह के कलाम और दूसरी बातों में फर्क रखिए। अभी भी आप देखिए, हम तर्जमा पढ़ते हैं तो आप एक खास स्टाइल नोट करेंगे कि जब तर्जमा पढ़ा जाता है तो टोन चेंज की जाती है। जब बीच में कोई कमेंट देना है या अपनी तरफ से कुछ उसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा जुमला बोलना होता है तो उसमें आवाज का अंदाज फर्क होता है, ताकि इसका फर्क महसूस करें। ये ना हो कि लोग यही समझ लें कि कुरान का तर्जमा और मेरी बातें एक है, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें यहाँ बैठकर कभी भी उसकी बात में तब्दीली करने की तौफीक नाता फरमाए। फरमाया, किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो इसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। पर्सनैलिटी वर्शिप का रद है। आज मुसलमानों के बहुत सारे फिरके, उनकी गुमराही की बहुत बड़ी वजह क्या है कि जो उनके लीडर थे वो उनको पूछने लग गए, नबी से भी ऊपर मुकाम कर दिया, और उनकी तस्वीरें और उनके आने और उनके जाने पे जो मुजाहिर होते हैं वो सरासर शिरके होते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बन जाओ, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। ये है असल में इस दीन की बात। अपने लिए लीजिए इसको। दीन पढ़ने के बाद खुद से पूछिए, किसके करीब हो रही हूं? अल्लाह के और जन्नत के और अमल के। तीन चीजें हैं, अल्लाह का कुर्ब, जन्नत का कुर्ब यानी उसको पाने की तलब, और अमल करने को दिल चाहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और उसके बाद फिर सहाबा समेत हर नेक बंदे से मोहब्बत है। तो आप समझे कि आप ठीक चीज पढ़ रहे हैं। और अगर किसी से भी कुरान पढ़े, आप जिसमें मुझे भी लीजिए, आप मेरे से कुरान पढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के बाद ना तो आप अपने दिल में कोई अल्लाह का कुर्ब पाए, ना नबी की मोहब्बत, ना आपको कोई अमल की बात सजे। हाँ, बस आप गर्विदा हो जाएं तो मेरे हो जाएं या कुछ हमारे साथ काम करने वालों के हो जाएं तो समझें कि आप गलत जगह पे आए, कल मत आइएगा। आप में से जो पढ़ने के दौरान मेरे से करीब हो रहा है, सिर्फ मेरे से, एक मोहब्बत और चीज होती है, कुर्ब होता है, एक ताल्लुक होता है, वो एक सिंपल बात है, लेकिन इसमें बढ़कर हाथ चूमना, पांव चूमना, ये करना, वो करना, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के नबी के सहाबा ने कभी ये कुछ नहीं किया था सहाबा के साथ, जो आज बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं के साथ कई लोग करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हम सबको भी बचाए। वो तुम में से हरगिज ये भी ना कहेगा कि फरिश्तों को और पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? देखिए, दीन इस्लाम इतना लॉजिकल है। सजदा अल्लाह के लिए है ना, किसी मजहबी रहनुमा को सजदा नहीं होगा। रुकू अल्लाह के लिए है ना, तो रुकू किसी के आगे आप आने पर खड़े होकर झुकेंगे नहीं। आप कूमु लिल्लाही कानितीन, क्याम अल्लाह के लिए, आप किसी के आने पे अगर खड़े हो जाते हैं ना, जैसे आज मुझे नहीं पता यहाँ का क्या हालात है, लेकिन हमारे मुल्कों में ऐसे ही होता था, टीचर जब क्लास में आती है सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े होते थे, जायज नहीं है। कोई मेहमान आए, आप उसके आने पर खड़े हो गए, उसको वेलकम कर रहे हैं, उससे चीजें ले रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन रिस्पेक्टफुली किसी के आने पर खड़ा होना ये शिर्क होगा। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या नबी तुम्हें इस्लाम पे आने के बाद कुफर का हुक्म देगा? ऐसा नहीं करेगा। याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताबों, हिकमत और दानिश से नवाजा है। ये नोट कीजिए, आज जो मैंने शुरू में इशारा दिया था ना कि हर नबी ने अपनी उम्मत को ये कहा था कि अगर हमारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो तुम हमें छोड़कर उनको लोगे। ये आयत उसकी दलील मौजूद है, आपके भी सामने आ गई। याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताबों, हिकमत और दानिश से नवाजा है, कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है तो तुमको इस पर ईमान लाना होगा। हाईलाइट करें, दूसरे रसूल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अगला नबी भी हो सकता है। फिर ईमान लाना होगा पहला दर्जा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी मदद करनी होगी। ये आगे हम पढ़ेंगे सूरह हुजरात में, तो बहुत ही डिटेल है, लेकिन यहां आपको इशारा मिल गया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत ईसा होते या हजरत मूसा होते तो वो अपने समेत तमाम मौजूदा ज्यूज और क्रिश्चियन को लेकर मुसलमान होने का ऐलान कर देते। यही चीज इन आयतों में हमें बता दी गई। और फरमाया, ये इरशाद फरमा कर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका यानी अल्लाह के दीन को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? खुद से पूछिए। आज जो मुसलमान अपने ही दीन पे अमल नहीं करते, अल्लाह उनसे सवाल करता है, तुम्हें मेरा तरीका नहीं पसंद, तुम्हें मईशत माशरत इकोनॉमिक्स इस्लाम की नहीं पसंद, तुम्हें लिबास हिजाब के तकाजे इस्लाम के नहीं पसंद, तुम्हें अल्लाह ताला का बताया हुआ शादी ब्याह का तरीका नहीं पसंद, नबी के तरीके नहीं पसंद, तो जाओ फिर कोई और ले आओ। जैसे माँ गुस्से में आती है ना जब, तो कहती है तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद, जाओ जहां से मर्जी खा के दो, मैं तुम्हें नहीं दे रही, मैं अब तुम्हारे लिए नहीं पका रही। वो तो माँ होती है ना, वो तो इतना कह देती है, अल्लाह को क्या उससे ज्यादा का हक नहीं है? अल्लाह इतना यहाँ बेनियाज है इनायतों पे। आप देखिए पारे का एंड है, और आप अपने दिलों को टटोले, क्या मेरे दिल के अंदर इस किस्म की कैफियत है कि मैं इस शिद्दत को महसूस करूं? मैं मुसलमान हो के बेअमल, मैं मुसलमान हो के बेनमाजी, मैं मुसलमान हो के नाफरमान। एक हो गया वंस अ वाइल, कभी हो गया, इट्स फाइन, अल्लाह को पता है हम सब इंसान है, लेकिन लाइफस्टाइल बना के गुनाह करना और कहना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? इतना दूसरों से इंप्रेस हो गए कि हमने अल्लाह के दीन को पीछे डाल दिया। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं ऐसे मुसलमानों को कह दो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, सोच लो एक बार फिर सोचो, नहीं मानते तो जाओ बार पीछे हो जाओ। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ध, और उसी के लिए तो मती और फरमा बरदार है हर एक जो आसमानों जमीन में है। जाओ, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह की कुर्सी कोई सियासी कुर्सी नहीं है कि तुम्हारे वोट कम हो गए तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को पीछे होना पड़ेगा। ही डोंट केयर अबाउट यू। और 3 सेकंड तक सोचिए, अगर मैं रब को ना मानूं रब का क्या जाएगा? एक छोटा पैदा हुआ बच्चा साल दो का मां की बात ना माने या कि मैं आप नहीं, तो मां को क्या फर्क पड़ता है? वो मां के लिए ना खिला रहा है ना पिला रहा है ना उसके लिए कुछ कर रहा है, तो क्या अल्लाह को मेरी जरूरत है? अब इसको अपोजिटली फिर 3 सेकंड तक सोचिए, अगर अल्लाह मुझे छोड़ दे तो मेरा क्या बने? ये सांस हलक में रह जाए, ये आवाज बंद हो जाए, ये कान छोड़ दे, ये कमर तख्ते की बन के उलट जाए और हम दुनिया में सांस ना ले सके। हम सब अल्लाह के इतने मुख्ताज हैं। या युहन्नासन तुमुल फकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के आगे फकीर हो, ए लोगो तुम अल्लाह के आगे मजबूर हो, सोच लो अपनी फिक्र कर लो, इसलिए ये बेनियासियां छोड़ दो। 1400 साल हो गए इस इस्लाम को दिए हुए, तुम्हें 400 साल हो गए सोते हुए, अब जागो और जगाओ। ये सदी जागने और जगाने की सदी है। हर दौर का एक तकाजा होता है ना, आज के दौर में जो बच्चे पैदा हुए इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत है, ये उस ड्यूरेशन में नहीं आए कि जिसमें सब सो रहे थे और सो के दुनिया से चले गए, वो अब गुजर गई 3 सदियां, 400 साल हो गए मुसलमानों को सोए हुए। कितना को सोएंगे, बिल आखिर तो फिर उठना ही पड़ता है ना, और जब उठते हैं ना तो भूख लगती है, सोते रहेंगे कोई परवाह नहीं, दोपहर तक कुछ नहीं खाया भूख नहीं लगेगी, जो ही उठेंगे एकदम खिंच पड़ेगी। अब सोए हुए मुसलमान उठ रहे और उनको भूख लग रही है, किसकी? इस किताब की भूख है। आज हमारी यूथ के अंदर जो अर्ज है और जो तड़प है इस किताब को सीखने की, वो बड़ों में नहीं है, इल्ला माशाल्लाह। तो सोते हुए को जगा दिया है, दुआ कीजिए कि अब जागते हुए को भी जगा दे। सोते को जगाना बहुत आसान है, जागते को कौन जगाए? जो उठना ही नहीं चाहता वो ऐसे ही रीला बन के बैठा है कि उठ गया तो सहरी खानी पड़ेगी, उठ गया तो दूध पीना पड़ेगा, सोते ही रहो ताकि सहरी का वक्त पूरा हो जाए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अब हमें जगवा दे। और मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई बड़ा कारनामा नहीं दुनिया में शायद हम देख सके, लेकिन हमारा नाम कहीं ना कहीं पड़ा होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया ने जो चूंच भर पानी फेंका था, अल्लाह ने उसका भी अजर लिख दिया। मैं और आप कुछ करके जाएं, पता नहीं हमारे पास कितने दिन हैं, महीने हैं, साल हैं, हफ्ते हैं, तो कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। फरमाया और इसी की तरफ सबको पलटना है, और जिस दिन वापसी होगी वहां क्या जवाब देंगे? ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, इस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई है, और उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुई थी, और इन हिदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को इनके रब की तरफ से दी गई। हम इनके दरमियान फर्क नहीं करते, हम अल्लाह के ताबे फरमान मुसलमान हैं। इस फरमाबरदारी यानी इस्लाम के सिवा कोई शख्स जो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहे, इसका वो तरीका हरगिज़ कबूल ना होगा, और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद होगा। बस लोग इस पे बहुत चिढ़ते हैं। क्यों कहते हो कि इस्लाम ही कबूल होगा क़यामत के दिन? वाह अल्लाह जब मुसलमानों की नेकियों को कबूल करेगा तो दूसरों की क्यों नहीं? मैं आपको मिसाल देती हूँ इसी स्कूल की जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं। इल्म अकेडमी स्कूल है, इनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, होगा ना, इनका रिजल्ट कार्ड है, इनके एम्प्लॉयमेंट वॉलंटियर सब फॉर्म है ना। कल कोई किसी और स्कूल का फॉर्म ले आए और कहे कि इसकी बेस पे मुझे यहां एडमिट कर दो, तो ये कबूल करेंगे उस फॉर्म को? बात तो सारी समझ आ गई है। हर इदारा अपने डॉक्यूमेंट्स को पास करता है ना। आप PIA के ऑफिस में जाएं और एयर ब्लू की टिकट ले जाएं और कि मुझे इस पे चढ़ा दो, लोग फर्क क्या पड़ता है, जाने देते हैं? आपके पास एक 19-20 का टिकट का नंबर फर्क हो, वो आपको जहाज में नहीं बैठने देंगे। तो अल्लाह की जन्नत जबरदस्ती की, आप भी ले जाए मुझे भी ले जाओ, थक्के मार मार के हम कहते हैं हमने देखना फलां को भी ले जाना है। अब नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोगों को बड़ा दर्द है कुछ कुफार के वो कैसे आग में जा सकते हैं, वो तो इंसानों की बड़ी खिदमत करते थे और दिस एंड दैट, और आप कैसे कह सकते हैं कि फलां जन्नत में नहीं जाएगा? भाई मुझे और आपको कुछ कहने की क्या फिक्र है? मुझे तो अपनी फिक्र है, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, और वल्लाह इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को अपनी फिक्र करनी पड़ेगी। खुद से पूछें, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? क्या मैं इन्हीं हालात में जिसमें आज जी रही हूं जन्नत में जाऊंगी? अल्लाह ने इंतकाल हो जाए तो क्या वो जन्नत में जाएगा? क्या उसके सर पे कोई नमाज तो नहीं फर्ज? क्या उसके कोई कजा रोजे तो नहीं फर्ज? क्या कोई हराम हलाल की पाबंदियों से आजाद तो नहीं था? हम तो इतने मजे में बैठे हैं, हम कहते हैं चंद छोटी छोटी नेकियों को बेस करके कहते हैं देखना अल्लाह ने बस नाम लिख दिए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। देखिए गुमान तो सबके लिए, क्या अपने लिए भी यही करना है, लेकिन नीयत ये कीजिए कि अमल करना है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और अगर अमल नहीं होगा ना तो अल्लाह ताला फिर मेरे और आपसे मुतासिर नहीं होगा। इस तरह नहीं अल्लाह ताला हमें पकड़ के ले जाएगा, चलो ना जो ले आयो, आप यहां बैठे हैं डॉलर ही एक्सेप्ट होगा। आप पाकिस्तानी रुपीस दे, वो कहेंगे जाए गो टू बैंक चेंज करो वापस लेके आओ फिर लूंगा। कितनी बीसियों मिसालें मौजूद हैं। आप बिल जमा कराएं दुनिया में, बिजली गैस पानी पेट्रोल, हर बंदा अपने रूल्स पे चलता है, तो क्या अल्लाह के कोई रूल्स नहीं है? इसीलिए आप देखिए ये आयत 86 में हमेशा हाईलाइट करवाती हूँ, ये नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, इस आयत में क्रिश्चियंस की बात नहीं है, ज्यूस की बात नहीं है, हिंदूज की, बुद्धास की, किसी रिलीजन की बात नहीं है, ये मुस्लिम्स की बात है। इसलिए सिर्फ मुझे और आपको इसको गौर से सुन के इस पे तदब्बुर करना होगा। कैफ यहदिल्लाहु कौमन, कैसे अल्लाह हिदायत दे उस कौम को? हाउ इज इट पॉसिबल? कौन सी कौम? कफरु बादा ईमानिहिम, जिन्होंने कुफर किया अपने ईमान के बाद। हम कहते हैं कुफर किया ईमान के बाद, ये कौन सा कुफर है? अमल का कुफर है। ईमान लाए थे ना, हम कहते शायद यहां कुफार मुराद है, नहीं। वह शहीद रसूल हक्कुन, जिन्होंने ये गवाही दी थी कि रसूल सच्चे हैं। क्या कहा? अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये कलमा कौन पढ़ते हैं आज के दौर में भी? मुसलमान पढ़ते हैं। तो अल्लाह अब इस जुमले में क्या कह रहे हैं? अल्लाह ऐसे मुसलमानों को कैसे हिदायत दे कि जिन्होंने अल्लाह के बाद रसूल को भी नबी कहने के बाद फिर बात नहीं मानी। ये कुफर अमल का कुफर है, अकीदे का नहीं है। वजाहुमुल बैजिनात, और आ गई उनके पास दलीलें। ये कौन सी हैं? ये कुरान और सुन्नत, आयते हैं, रोशन वर्सेस हैं, क्लियर वर्सेस हैं, इनको पढ़ते नहीं हैं, चूमते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, तो अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कौन है इधर जालिम? जो अल्लाह की किताब की आयतों से हिदायत न ले। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। इनके जुल्म का सही बदला यही है। बड़ी सख्त आयते हैं, मुसलमानों के दिल पे पढ़ने वाली आयतें। कैसे मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद फिर अमल नहीं करते, उनका बदला क्या? इनके जुल्म का सही बदला यही है कि इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार है, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे। यह आज फिटकार है, जहां मुसलमान डिग्रेडेड है यह अल्लाह की सजा है। ना इनकी सजा में तख़फीफ होगी और ना इनको मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता अब रास्ता खुल गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है अल्लाह में चंद सेकंड भी दुखी नहीं देख सकता। अल्लाह को पता लग जाता है जब हमारा दिल नुचड़ जाता है ना, तो साथ ही अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं, अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इसलाह कर लें। ये मेरे और आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. یعنی سنتے ہیں بس, صرف سنیں گے. وی آر اونلی لسنر, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے, کفر سے مراد بے عملی. ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. کھیل سمجھا؟ دیکھیے, کافر گناہ کرتا اللہ کو غصہ نہیں آتا. اللہ کو امید ہی کوئی نہیں کفار سے. اگر آج ہماری امیدیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں نا, تو آپ دیکھیے کہ مسلم از دا اونلی گروپ آن دا ارتھ کے جس سے اللہ کو امیدیں ہیں. تو وہی نہ پورا ہو تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, یہ تو پکے گمراہ ہیں. یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی, ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے, تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. کب؟ کل عذاب کو دیکھ کر لوگ کہیں گے, اللہ زمین بھر کے سونا ہو وہ دے کر آج اس عذاب سے بچ جائیں, تو اللہ کہے گا میں نے تو بہت تھوڑا مانگا تھا. اس دن قبول نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو یہ تھا تیسرا پارا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.